Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Umeshanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Eko hi rudro na dvitiyaya tastu ya ima lokan nishate ishani bhihi pratyang jana stishtati samchukosa antakale samsijya vishwa Bhuvanani Gopa. ये मंत्र का अर्थ समझ में आई ना? ये देखो, पहले अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय चल रहा है. पहले अध्याय में क्या कारण अनुसंधान किया गया? कारण किम कारणम ब्रह्म कुतः स्मजाता विवाह के न को सम प्रतिष्ठा के जगत के कारण के विषय में अनुसंधान किया. दूसरा में ध्यान जोगा अनुगता अवश्यन, ध्यान जोग का अनुसंधान हुआ. तीसरा में क्या हो रहा है? तत्त्वमसि महावाक्य के जो तत्पद है, तत्पद का स्वरूप वर्णन कर रहा. तो इसमें कल बतलाया था एको रुद्र न द्वितीय तस्तु. परमात्मा रुद्र माने परमात्मा समझ लेना. एक ब्रह्म रुद्र परमात्मा है. अन्य बात, वो क्या करता है? इमान लोका निशते इशनिभि, इन लोकों को शासन करता है. किन लोकों को शासन करता है? इमान लोकान, आयाम इमे इमे इमान इमे इमान, ये प्रत्यक्ष है. इधम शब्द से बनता आयम इमो इमे इमान लोकान. ये जो प्रत्यक्ष है ना, भूलोक वोलोक सहलोक महालोक जनलोक तबलोक सत्यलोक अतल बीतल सुतल तलातल रसातल पातल महातल चतुर्दश भुवन की शासन करता है. किससे करता है? तो इसे ने भी शासन शक्ति के द्वारा, ऐश्वर्य शक्ति के द्वारा. ये रहता कहाँ? प्रत्यक जनान अन्य बात, प्रत्येक जनान स्थिति, प्रत्येक प्राणी के अंतकरण में, समझे कि नहीं, प्रत्येक प्राणी के अंतकरण में हृदयस्थ, हृदय में. जैसे गीता में भगवान बोला नहीं, आम आत्मा गुड़ा कैसा सर्वभूताशय स्थित, आम आदिश मध्यम से भूता नाम अंत ही बस, बोला कि नहीं? ईश्वरों सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढानि माया की प्रमाण है. सबके भीतर रहने का एक प्रमाण, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः, ये श्रुति प्रमाण है. अन्य बात, ये श्रुति प्रमाण है. सर्व सबके भीतर रहता है, सब प्राणियों के. अन्य बात, सर्वजना शिष्यति. अच्छा, क्या करके रहता है? करता क्या पहले क्या करके? तो विश्व भुवना विश्व संसृज्या, विश्व को सृजन संसृज्य उत्पद्य, विश्व की रचना करके, ये रचना उत्पत्ति जतो वाय माने भूतानि जायन्ते जेन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिशम्भिषन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्मा. अनि बात, ये विश्व जो है ना संसृज्य, ये विश्व को सृजन किया. विश्व कहां से उत्पन्न हुआ? वो परमात्मा से. एको जो रुद्रना द्वितीय तस्तु विश्व संसृज्य, फिर ये सृजन किया उत्पत्ति, फिर भुवनानी गोपाहा, गोपा माने पालन करके, पहले उत्पन्न किया, फिर उसकी रक्षा की, फिर अंत काल में प्रलय काल में आपने में लीन करके सो गया. ये गीता में भी ये बात आया अनिवार्य, गीता में भी ये बात बार बार आया, एक बार नहीं दो बार नहीं कई बार आया। ईश्वर जगत को उत्पन्न करते हैं, इसे जगत के पालन करते हैं, संहार करते हैं, इसका बात आई है अंतकाल में। ये बात कल बताया था, यहां से कहां से चलेगा ये, उससे पहले देखना है एतद उक्तम भवती, एतद उक्तम भवती यह कहा है, क्या कहा, अद्वितीय परमात्मा। परमात्मा कैसा, एकमेव अद्वितीयम, परमात्मा कैसा है, एकमेव अद्वितीयम परमात्मा है। अनिवार्य न चासो कुंभकार आत्मानम केवलम मृतपिंड स्थानीयम उपादान कारणम उपादत्ते। देखो आपने को उत्पन्न करता है, जैसे कुम्हार है मृतपिंड मिट्टी के द्वारा, मिट्टी क्या हुआ उपादान कारण, किसके प्रति घड़ा के प्रति। तो संसार में समझ लेना हर वस्तु के कोई ना कोई कारण होता है, जैसे घड़ा के प्रति मिट्टी उपादान कारण, आभूषण के प्रति जो है ना सुवर्ण उपादान कारण है, वस्त्र के प्रति तंतु उपादान कारण है, ऐसे सबका अलग अलग उपादान कारण है। एक उपादान कारण सब जगह में मत लेना, अलग अलग उपादान कारण अलग अलग कार्य के प्रति है। रोटी के प्रति उपादान क्या है, हलवा के प्रति, तो सबके प्रति उपादान कारण भिन्न भिन्न है, एक ही उपादान सब नहीं बनता है। जैसे मुंडक उपनिषद में बताया ना अग्नि इतस्मा जायते प्राण माना सर्व इंद्रिया निशा खम वायु तिराप पृथ्वी विश्वेश्वर धारिणी अग्नि मुर्दा चक्षु चंद्र सूर्य दिशा स्रोत्र बाघ विविता सवेद वायु प्राणम हृदय विश्वमिश पद्म ये सर्वभूतांतरात्मा, सब भूतों के अंतरात्मा कहता है, ये बताया ना। तो इसी प्रकार कायदे परमात्मा उपादान कारण तो है, पर कैसे उपादान कारण है ये बता रहा है। तो कुमार के जैसे, जैसे कुमार मिट्टी के लिए या घोड़ा के लिए मिट्टी लिए उपादान कारण के रूप में, ऐसे परमात्मा जगत के प्रति उपादान कारण नहीं है, कारण तो है, कारण तो है, पर उपादान कारण माने उपो माने समीप में रह करके, आदान माने जो लेता है। घड़ा बनाना है तो कुमार जो है मिट्टी के गोला के बैठ करके इतना मिट्टी लेगा, जितना मिट्टी लेगा उतना ही उपादान कारण है, सब मिट्टी उपादान कारण नहीं है। ऐसे सोना आभूषण बनाएगा हार के लिए, जितना एक तोला आधा तोला सोना अपना ढेला से काट करके लेगा उतना सोना ही उसके उपादान कारण होगा, सब सोना उपादान कारण नहीं है, याद रखना, समझे कि नहीं। तूफ आदान थोड़ा जितना जरूरत है उतना ही कारण बनेगा। तो ऐसे कहते हैं जगत बनाया परमात्मा ने, तो जगत के प्रति परमात्मा उपादान कारण है, तो कारण से कौन सा कारण है ये प्रश्न है। उपादान कारण है कि मिट्टी के जैसे घड़ा के प्रति जो उपादान कारण ऐसा है, कि परमाणु उपादान कारण है, कि प्रकृति उपादान कारण है, कि कर्म उपादान कारण है, कि काल उपादान कारण है, कि स्वभाव उपादान कारण है, क्या कारण है, कि प्रकृति उपादान कारण है, क्या है, कि कोई प्रश्न हुआ, समझे कि नहीं, क्या प्रश्न है, क्यों इसके मूल में आके पहले ही आपको बतला दिया था। काल स्वभाव नियति जदृशा भूतानि योनि पुरुष इति चिंता संदुख ईशा नतु आत्मभाव आत्मा पे निशा सुख दुख है, तो क्या कारण है जगत के प्रति, अर्थात तो ब्रह्मवादिनो वदन्ति, ब्रह्मवादी लोग विचार करने लगे, ब्रह्मवादी समझ में है ना, क्या ब्रह्म वेद वेदवादी ब्राह्मण लोग, जब ब्रह्म को जान लिया फिर विचार करने की जरूरत क्या है। यदि आपने आत्मा को जान ही लिया, ब्रह्म को जान लिया, अर्थात ब्रह्मवादिनो वदन्ति किम कारण ब्रह्म को कुतस्म जाता, ऐसा पूछने का प्रश्न करने का जरूरत क्या है। ये ब्रह्म वेद, ब्रह्म वेद को भी कहते हैं, ब्रह्म प्रकृति को भी कहते हैं, ब्रह्म हिरण्यगर्भ को भी कहते हैं, ब्रह्म जीव को भी कहते हैं, आई नहीं बात, ब्रह्म जो है ना वेद को कहते हैं यहाँ। वेदवादी ब्राह्मण लोग इकट्ठा बैठ करके विचार करने लगा जगत का कारण कौन है, क्या ब्रह्म जगत का कारण कौन है, ये पूछ रहा है आपस में। आपस में विद्वान लोग बैठ करके विचार करने लगे, किम कारण ब्रह्म, क्या ब्रह्म जगत का कारण है, एक दूसरे से पूछते। तो उस अवस्था में ऋषि लोग ने, किसी ने कहा नहीं जगत का कारण काल है, किसी ने कहा स्वभाव है, किसी ने कहा प्रकृति है, किसी ने कहा अदृष्ट है, किसी ने कहा कुछ, किसी ने कहा कुछ, निर्णय नहीं हुआ था। तब तीन सब ऋषि जाकर ध्यान युग में बैठ गया था। ते ध्यान दुगागता अवश्यम देवात्मा शक्ति सगुण निगुणाम संजुग ऐसा न तो आत्मा भाव, आत्मा भी नहीं सुख दुख है, तो का जीव है इसका सबका मिला करके सब कारण है या जीव कारण है, का जीव भी कारण नहीं हो सकता, जीव स्वयं सुखी दुखी होता है, क्या कारण होगा। ऐसे विचार करते 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 ऋषि लोग या पर उसमें संसार नदी का निरूपण किया आया, पंच पंच स्रोत अम्बु वेगाम पंच ध्वनि उग्र बक्राम पंच परवाम भीम पास हुआ है ना, बताया ना पंच दुखों का वेगाम, ये सब बात बताया कि नहीं। इसलिए कारण का अनुसंधान पहले अध्याय में हुआ, जगत का मूल कारण क्या है। दूसरा अध्याय में जानने के लिए जो ध्यान जो किया है ना, ध्यान जो का निरूपण किया, ध्यान जो के बैठा है सब ऋषि लोग, ध्यान जो में बैठा है। तीसरा में आकर के क्या विचार कर रहा है, तत्वसी महावाक्य के तत्पद का बच्चार्थों पर विचार चल रहा है, बच्चार्थों पर याद रखना। क्यों इसमें जो बोल रहा है ना, एको रुद्र न द्वितीय तस्तो सैम्या लोका निषति से ने भी, तो ईश्वर जो है ना जगत का शासन करेगा, तो माया विशिष्ट जो चेतन है वो जो ईश्वर है, वो ईश्वर ही जगत का शासन करेगा। ब्रह्म तो शासन करेगा नहीं कुछ, काल बताया ना ब्रह्म क्या है, आज आप बताया ना राष्ट्रपति है ब्रह्म, राष्ट्रपति है ब्रह्म, शासन करने वाला मनमोहन सिंह है ईशान, शासन करने वाला कौन है, ईश्वर, ईश्वर ही जगत का शासन करता है। तो केवल ईश्वर जगत का मनमोहन सिंह नहीं करेगा, वो भी बैठेगा, वो भी नियुक्त करेगा, वो भी मंत्रियों का नियुक्त किया कि नहीं किया, कैबिनेट, अर्थ मंत्री है, विदेश मंत्री है, रक्षा मंत्री है, अर्थ मंत्री, सब मंत्री बनाया कि नहीं, ये सब अपने आप में विभाग संभालो, सबको दिया कि नहीं दिया। ऐसे ब्रह्म है राष्ट्रपति, ईश्वर है प्रधानमंत्री, आनी बात, और देवता लोग है ब्रह्मा विष्णु महेश है, तीन विभाग के मुख्य मुख्य विभाग किसके पास है, ये तीनों का मुख्य विभाग है, पर इन लोगों ने अपने अपने अलग किया, देवराज इंद्र को देवताओं का रखा है, वायुदेव को बनाया है, अग्निदेव को बनाया है, कुबेर को बनाया है, क्या वरुण देव को बनाया है, ये सब अलग अलग विभाग का अलग अलग बन गया, सबका एक नहीं है। तो ऐसा जो शासन करने के लिए शक्ति चाहिए, जब शक्तिमान ही शासन करेगा, दुर्बल शासन नहीं करेगा, ना यम आत्मा बला ही न लभ्या न मैं दया न बहु न श्रुते न, आगे नहीं बात। देश को शासन करने के लिए शक्ति चाहिए, अगर ईश्वर दुर्बल हो जाए, समझेगी नहीं, वो देश बर्बाद हो जाएगा। प्रधानमंत्री आप भी बोलते ना, हमारा देश का शासक जो है ना कमजोर पड़ गया, इसीलिए चारों तरफ से भ्रष्टाचार फैल रहा है, कहते कि नहीं, तो ऐसे तो ईश्वर दुर्बल हो जाए तो देश शासन करेगा कौन। तो देवता लोग देश को शासन करते, जिसका जो विभाग है तो विभाग को संभालता है, भया तस्य अग्निस्तपते भया तपते सूर्य भया इंद्र वायु स मृत्यु धावते पंचम, सबके पीछे एक शक्ति है, शासन शक्ति है, ईशनी भी शासन शक्ति भी ऐश्वर्य शक्ति भी, क्यों ईश्वर को सर्वश्वर्य संपन्न मानते हैं। ईश्वर का लक्षण क्या है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य दशरथ श्रिया, समग्र ऐश्वर्य का चार शक्ति उनके पास है, तभी शासन करेगा। ऐसे शासन नहीं कर सकता है। घर में भी तुम शासन करते हो ना, घर में भी शासन करने के लिए तुमको कड़ा होना पड़ता है, ऑफिस में शासन करने के लिए कड़ा होना पड़ता है, तो राष्ट्र शासन करने के लिए कड़ा होना नहीं पड़ेगा? ढीला हो गया तो चाल लूटपाट चालू होगा कि नहीं होगा? शासक अगर ढीला हो गया तो चारों तरफ लूटपाट होगा। वो था ना भागवत में कथा, सुनते होगा ना, ये को वो राजा था ना, मेरा क्या मेगा और वो बना का था ना, उसने लूट पाट चारों तरफ से चालू हो गया, फिर पितु राजा को बना दिया था ना। मैं इसीलिए तो चारों तरफ अत्याचार अनाचार व्यभिचार चालू हो गया था, फिर राजा पितु को बनाकर ऋषियों ने बना करके उसको बैठाया, शासन करो तुम। इसलिए राजा को हमेशा, शासक को हमेशा कड़ा होना पड़ता है। तो ये पर इसी पर अगर यह बतलाते ईश्वर ने भी ही स ईशते, स माने वह परमात्मा अपने शासन शक्ति के द्वारा शासन करता है। तो पूछा गया कहाँ रहता है फिर वो, उनका राष्ट्रपति भवन किधर है? ईश्वर का भवन किधर है? ईश्वर कहाँ रहता है? प्रत्यंग जनान, प्रत्येक हर एक आदमी के, हर एक प्राणी के हृदय जिसमें रहता है। हाँ, तुमको ढूंढने के लिए जाने का जरूरत नहीं है, और छिप करके काम करोगे ना, समझोगे नहीं, वो भी जान लेगा। हाँ, तुम सोचते हम छुप करके काम करके, कौवा के जैसे आंख बंद करके काम करके कोई देखेगा नहीं, परंतु तो भीतर कर्माध्यक्ष बन करके बैठा हुआ है, भीतर बैठा है, देखता है। कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवल निर्गुणस्व, सब कस करो। वो आधा वो गुरु के पास दो जिज्ञासु आया था, हमको उपदेश कीजिए, तो गुरु ने कहा इसके परीक्षा करके देखना चाहिए। तो गुरु ने दो मिट्टी का कबूतर उठा करके दिया, जाओ इसको ऐसे जगह में ले जाकर तोड़ करके लाओ जब कोई देखे ही नहीं। तो एक ने गुरु के आश्रम के पीछे गया, वहां जाकर तोड़ करके लाया, और एक दूसरे के गया और गया, क्यों? यहाँ कोई देखता है, यहाँ कोई देखता है, यहाँ कोई देखता है, यहाँ पक्षी देखता है, चिड़िया देखता है, वृक्षा देखता है, लता देखता है, गुलमा देखता है, जाते जाते पर्वत के गुफा में चला गया, अब यहाँ कोई नहीं देखा। इतना में अंदर से आवाज आया, मूर्ख कहीं कर, तेरे भीतर तो बैठा हुआ वो देखता रहा कि नहीं देखता है? और कहीं नहीं देखता है, तेरे भीतर जो बैठा हुआ है वो तो देखता है, तो तोड़ा नहीं ले आया। तो कहने का मतलब और कोई नहीं देखेगा, तो तुम्हारे कर्म के जो अध्यक्ष बन करके तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है वो तो जानेगा तुम सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो, पाप कर रहे हो कि पुण्य कर रहे हो, धर्म कर रहे हो कि अधर्म कर रहे हो, वो तो जानेगा कि नहीं? तो कहते प्रत्येक जना शिष्य, प्रत्येक प्राणी के भीतर बैठा हुआ है वो देख रहा है नहीं बात ना। क्या करता है? पहले जगत को बनाता है। हाँ, जगत को बनाकर बनाता है, फिर उसका पालन करता है, फिर इसको संहार, प्रलय काल में संकोच करता है। संकोच माने समेट लेता है। आपने जाल फैलाया, जैसे मच्छी मार जाल फैलाता है, फिर जाल को समेट लेता है कि नहीं? जाल नहीं समेट लेता है। ऐसे परमात्मा जाल फैलाता है, स जालावान ईशत ईशनी भी, स परमात्मा जाल वाला है, सारे संसार में जाल फैलाया है। कौन सा जाल? माया जाल। जादूगर भी जाल फैलाता है, जो जादूगर का जाल भी वो भी माया जाल है। वो जो देखने जाता है वो फंस जाता है उसमें, कितना बढ़िया बढ़िया, तालियां बजाता है, बजाओ तालियां, उठाओ हाथ ऊपर, बोलता है कि नहीं जादूगर? तो जैसा जादूगर बोलता है ऐसे आपको करना पड़ता है। नजर पर कुछ भी कहे उसका जाल तो है ना, जादू तो है ना। चलिए तो अंत काल में क्या करता है, जब खेल समाप्त हो जाता है ना, तो जैसे जादूगर खेल समाप्त होते हैं अपने सब समेट लेता है, बरिया बिछना बांध करके चलने लग जाता है, झोला में सब भर देता है, ऐसे परमात्मा भी प्रलय काल में क्या करता है, सारा संसार को समेट लेता है। ये बात देखो इसमें होता रहा है। किंतरी तो क्या कर सशक्ति विक्षेपम कुर्बन, अपने शक्ति में विक्षेप करता है।